कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिविर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर नेताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेम All glories to symbol devotees. All glories to symbol devotees. All glories to symbol devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद अध्याय पांच श्लोक संख्या 34। मेरे पीछे बोले सोमं मनो यस्य समामनन्ति देवौ कसाम यो बलमन्द आयुः ईशो नगानां प्रजना प्रजानां प्रसीदतां नः समाविभूतिः सोमं मनो यस्य समामनन्ति देवौ कसाम यो बलमन्द आयुः ईशो नगानां प्रजना प्रजानां प्रसीदताम नः समा विभूतिः सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां यो बलमन्द आयुः ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः समा विभूतिः बोलिए वैष्णव देवियां शब्दार्थ बोलिए बोलो शब्दार्थ बोलिए सोमम चंद्रमा मनः मन यस्य जिन श्री भगवान का समामनन्ति वे कहते हैं देवों का साम उच्च लोक के निवासियों का यह जो बलम बल अंधः अन्न आयुः उम्र ईशः परमेश्वर नगानाम वृक्षों का प्रजनः प्रजनन का स्रोत प्रजानाम सारे जीवों का प्रसीदताम वे प्रसन्न हो नः हम पर सः वे भगवान महाविभूतिः सारे ऐश्वर्यों के स्रोत अनुवाद मेरे पीछे बोलिए सोम यानी चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न बल तथा दीर्घायु का स्रोत है वह सारी वनस्पतियों का स्वामी तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है जैसा कि विद्वानों ने कहा है चंद्रमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मन है ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक को समझेंगे और कथा वस्तु समझेंगे। कथा वस्तु जो चल रही है वो ये है, आठवां स्कंद है। आठवें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न के अनुसार अलग अलग मनमंत्रों के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं ये कितनी संख्या का मनमंत्र चल रहा है, है? कौन सा मनमंत्र चल रहा है, कितनी संख्या है जी? सातवां मनमंत्र चल रहा है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले मनमंत्र से शुरू करके बताए हैं भगवान के अवतार। तो पहले मनमंत्र के जो मनु थे वो थे स्वयंभू मनु, और इंद्र थे यज्ञ भगवान। पहले मनमंत्र के इंद्र भी जो है भगवान ही बने, यज्ञ भगवान बने। अवतार हुआ कपिल भगवान का, तो ये पहले मनमंत्र का अवतार है, कपिल भगवान का अवतार हुआ। फिर दूसरा जो मनमंत्र आया उसके मनु थे स्वरोचिस मनु, और इंद्र थे रोचन, और अवतार हुआ विभु नाम से। फिर तीसरा मनमंत्र हुआ उसके मनु हुए उत्तम, और इंद्र थे सत्यजित, और अवतार था सत्यसेन का। फिर चौथे मनमंत्र के मनु हुए तामस, और इंद्र हुए त्रिशिख, और अवतार हुआ हरि अवतार। फिर पांचवें मनमंत्र के मनु हुए रेवत, और उसके इंद्र थे विभु, और अवतार हुआ वैकुंठ अवतार। छठे मनमंत्र के मनु हुए चाक्षुष, और इंद्र हुए मंत्रद्रुम, और अवतार हुआ भगवान अजित का। तो ये छठे मनमंत्र का वर्णन चल रहा है। तो इस मनमंत्र में भगवान अजित का जो अवतार हुआ है ना, तो उनकी लीला है। इस मनमंत्र में भगवान अजित ने क्या किया है, समुद्र का मंथन किया। पयोधिम ये निर्मथ्य है, तो जिन्होंने पयोधि का मतलब है क्षीर सागर का मंथन कराया है। इस समुद्र का मंथन नहीं कराया, जो हमारा समुद्र है वो है क्षार समुद्र, ये तो खारे पानी का समुद्र है, इसका मंथन नहीं कराया। बल्कि सात समुद्रों में से पांचवा समुद्र है, कौन सा समुद्र है, क्षीर सागर, उसका मंथन कराया है ना। तो उस इस मनमंत्र में यानी छठे मनमंत्र में कथा इस प्रकार से शुरू होती है कि इंद्र जो है दुर्वासा मुनि का अपराध करते हैं। ये भी कथा में नहीं है, वो तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि दुर्वासा का के शाप से देवता लोग पराजित हो जाते हैं। ये तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, लेकिन दुर्वासा के शाप से देवता लोग पराजित हो जाते हैं। तो दुर्वासा ने शाप क्या दिया और क्यों दिया, इस पर प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि दुर्वासा ने शाप इंद्र को क्यों दिया। तो इंद्र ने जो है दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया, और दुर्वासा मुनि ने अपने गले की माला इंद्र को पहना दी, और इंद्र ने वो माला जो है हाथी के गले में डाल दी, और हाथी तो पशु है, उसने जो है माला को गिरा दिया और पैरों से रौंद डाला। तो दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा सब ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। तो असुरों के जो है युद्ध में देवता लोग सब पराजित हो गए, और अब सब देवता लोग जो है ब्रह्मा जी के पास आए, और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के कहां पर आए हैं, क्षीर सागर के तट पर आए हैं, क्षीर सागर के तट पर आए, और ब्रह्मा जी सब देवताओं की ओर से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो श्लोक कई श्लोकों के अंत में प्रसिद्ध ताम नह समहा विभूति, ये जो पंक्ति है ये बार बार आ रही है, इस श्लोक की अंतिम पंक्ति बार बार आ रही है। जैसे हम लोग गुरुवष्टकम प्रार्थना गाते हैं तो सबसे अंतिम हर श्लोक के अंत में क्या आता है, कौन से शब्द आते हैं जो बार बार दोहराया जाता है, क्या है वो? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। आठवें श्लोक को के अंत में वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ये जो स्तुति कर रहे हैं इसमें कई श्लोकों में जो है ये पंक्ति बार बार आती है। प्रसीदताम नः समहा विभूति ही, प्रसीदताम नः समहा विभूति ही, है ना। तो प्रसीदताम का मतलब है कि प्रसन्न हो, प्रसीदताम नहा, और नहा का मतलब हमारे ऊपर, और सा माने वो भगवान, महाविभूति जो महाविभूति हैं, है ना, सब प्रकार के विभूतियों से संपन्न है, तो वे महाविभूति हैं, वे हमारे ऊपर प्रसन्न हो। और कैसी विभूति है तो प्रत्येक श्लोक में बताया गया कि भगवान की विभूति क्या है, है ना। तो यहाँ इस श्लोक में वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, सोमम मनोयस समामनंती, कि जो चंद्रमा है ये भगवान की विभूति है, है? और भगवान इस विभूति के स्वामी है, तो वे भगवान महाविभूति हैं। सोमम मनोयस समामनंती, जिनका जो है मन चंद्रमा कहा जाता है, चंद्रमा जिनका मन कहा जाता है, दिवों का साम जो बलमंद आयु, वो चंद्रमा कितना शक्तिशाली है। देवों का साम का मतलब देवताओं, जो उच्च लोक के निवासी हैं, उच्च लोक के निवासियों को जो बल प्रदान करता है, और अंध का मतलब भोजन प्रदान करता है, और आयु का मतलब है जीवन प्रदान करता है। तो चंद्रमा में इतनी शक्ति है, उच्च लोक के निवासियों का जो है भोजन भी उसी के द्वारा प्राप्त होता है, और बल भी प्राप्त होता है, और आयु भी प्राप्त होती है, बलमंद आयु। ईशो नगानाम, और पृथ्वी में जितने वृक्ष हैं है, उन्हें नग कहा जाता है। न गा, गा का मतलब जाना, और ना माने नहीं, जो नहीं जाते यानी चलते नहीं हैं, तो नग कहलाते हैं। वृक्ष जो है, जितने भी वृक्ष हैं सब नग कहलाते हैं। तो ईशो नगानाम, तो चंद्रमा जो है सभी वृक्षों के स्वामी हैं, और यशो नगा नाम प्रजना प्रजा नाम, और प्रजा को उत्पन्न करने है, के जो है कारण है चंद्रमा। प्रसीदताम नहा सा महाविभूति, तो ऐसे महाविभूति भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो ब्रह्मा जी जो है सब देवताओं की ओर से, कि देवताओं का कष्ट दूर हो, असुरों से देवता लोग पराजित हो गए हैं, असुरों ने देवताओं का स्वर्ग भी छीन लिया है, तो वे भगवान जो है हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। सोम जो चंद्रमा का अधिष्ठाता देव है, अन्न का स्रोत है, अतएव वह दैवी जीवों देवताओं की भी शक्ति का स्रोत है, वह सारी वनस्पतियों की प्राण शक्ति है। तो यहाँ पांच चीजें हैं चंद्रमा के संबंध में, ब्रह्मा जी पांच चीजें बतलाते हैं, है ना। तो एक क्या है कि देवों का साम देवताओं के लिए तो बल का कारण है, चंद्रमा से बल प्राप्त होता है देवताओं को, है? दूसरा, चंद्रमा से देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। तीसरा, चंद्रमा से देवताओं को आयु जीवन प्राप्त होती है। और चौथा, वृक्षों का चंद्रमा ईश्वर है। और पांचवा, प्रजा की उत्पत्ति का कारण है। तो पांच विशेषताएं चंद्रमा की बताई जा रही हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जो है, तात्पर्य में जो लिख रहे हैं कि अन्न का स्रोत है, है? अतएव वो दैवी जीवों का मतलब है जो स्वर्ग के निवासी हैं, दैवी जीवों और देवताओं की भी शक्ति का स्रोत है, है ना। अन्न का स्रोत है तो शक्ति का स्रोत है। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि अगर अन्न मिलता है जहाँ से, तो वहाँ से बल भी मिलता है, है ना। जहाँ से भोजन मिलता है, भोजन से बल भी मिलता है। तो एक ही बात है, अगर भोजन मिलता तो बल भी मिलता है, तो चंद्रमा जो है भोजन प्रदान करता है, सब जितने भी स्वर्ग के देवता हैं उनको भोजन प्रदान करता है। चंद्रमा में अमृत है और देवताओं का जो भोजन है वो अमृत है, जिससे मृत्यु दूर हो जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि मृत्यु होती नहीं है, मृत्यु होती है देवताओं की, लेकिन वो मृत्यु नहीं मानी जाती। उनका शरीर ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो, लेकिन उनको जो है अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग प्राप्त होता है और पुण्यों के बल से वे स्वर्ग में रह पाते हैं, और जैसे ही वो भोग करते हैं तो उनके पुण्य क्षीण होते हैं, और जब पुण्य क्षीण होते हैं तो वो जो है स्वर्ग से नीचे गिरते हैं। इस तरह से मृत्यु नहीं होती कि शरीर छूटे, उनका देवताओं का शरीर नहीं छूटता। इस तरह से स्वर्ग में जाते हैं उनको जो है देवता का शरीर प्राप्त होता है, स्वर्ग में जाते हैं तो उनका जन्म भी नहीं होता। इस तरह से माता के गर्भ से जन्म नहीं होता। जो पृथ्वी में जो पुण्य करते हैं तो वो स्वर्ग जाते हैं तो उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक नहीं है वो शरीर, लेकिन दिव्य कह सकते हैं, तो उनको जो है दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। वो शरीर जो है बिल्कुल पूर्ण विकसित शरीर होता है और स्वर्ग से विमान आता है और विमान में बैठ के चले जाते हैं, और स्वर्ग में वो जो है जैसे भोग भोगते हैं और पुण्य क्षीण होते हैं तो उनके पुण्य को क्षीण होने की सूचना देने वाली उनकी माला होती है। उनकी जो माला है तो ये माला मुरझाने लगती है। ये जो है सूचना उनको ही मिलती है, माला जैसे जैसे मुरझाती जाती है उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और जब पूरी तरह से मुरझा गई माला, पुण्य क्षीण हो गए पूरी तरह से, तो फिर उनका सिर नीचे और पैर ऊपर, बाल बिखरे हुए और नीचे गिरते हैं, स्वर्ग से नीचे गिरते हैं। तो ना तो ऐसे शरीर प्राप्त होता है उनको जैसे माता के गर्भ से कोई बच्चा पैदा हो, और ना उनकी ऐसी मृत्यु होती है कि शरीर छोड़ें और बुढ़ापा आए, ऐसा भी नहीं होता है। तो जब तक स्वर्ग में रहते हैं तो उनको इन चंद्रमा के द्वारा जो भोजन प्राप्त होता है वो अमृत होता है भोजन, तो मृत्यु दूर रहती है। और भूख की भी जो है बाधा नहीं होती है और मृत्यु भी नहीं होती है, बल मंद आयु, तो चंद्रमा के द्वारा। लेकिन बस यही है कि जो उनका पुण्य है तो वही जो है उनकी पूंजी होती है, और जैसे ही वो पुण्य क्षीण होते हैं तो नीचे गिरते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, है ना, तो वैसे मृत्यु नहीं होती, न बुढ़ापा होता है, लेकिन उनका जो है इस प्रकार से पतन होता है, स्वर्ग से पतन होता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, इस प्रकार से गतागतम लभन्ते, वो प्राप्त करते हैं गतम और आगतम, है ना, जाना और आना। तो स्वर्ग में जाना और आना होता है, तो इसलिए स्वर्ग जाना कोई अच्छी बात नहीं है। स्वर्ग जाना ये दुर्घटना ही है, क्योंकि निश्चित रूप से पुण्य क्षीण होंगे और फिर पतन होगा, तो अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी चंद्रमा की जो है महिमा बहुत बड़ी है, चंद्रमा की बहुत बड़ी महिमा है कि चंद्रमा जो है वैसे किसी को जो है बूढ़ा नहीं होने देता और बीमार नहीं होने देता और मरने नहीं देता। चंद्रमा का तो ये गुण है, और ब्रह्मा जी चंद्रमा के कारण भगवान का गुण गा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि जिनका जो है मन चंद्रमा है, और चंद्रमा में जो शीतलता और प्रकाश, जो शीतलता और प्रकाश है चंद्रमा में, वो भगवान के मन से आ रहा है। कई लोग जो है विचार करते हैं भाई चंद्रमा में इतना प्रकाश शीतल क्यों है, तो सूर्य का ही परावर्तन है, सूर्य के प्रकाश का ही परावर्तन है, तो इसमें गर्मी क्यों नहीं है। तो ये प्रश्न उठता है कि सूर्य के प्रकाश का ही परावर्तन है तो गर्मी क्यों नहीं होती है। जैसे मान लो दर्पण सूर्य के सामने आप कर दें तो दर्पण का भी जो है वो फोकस जो लगता है तो आपकी आंखों में लगता है तो आंखें बड़ी चकाचौंध हो जाती हैं और वो भी जला देता है सूर्य, वो भी जो है अगर फोकस किया जाए उसको एक बिंदु में तो वो भी जला देता है, कागज जला देगा, कुछ जला देगा, तो सूर्य का प्रकाश भी जो है वो भी परावर्तित होता है दर्पण से तो वो भी गर्म होता है। लेकिन चंद्रमा का, चंद्रमा के द्वारा सूर्य का प्रकाश ही परावर्तित हो रहा है लेकिन वो क्यों इतना शीतल है, तो इस संबंध में यही उत्तर है कि भगवान का मन है और भगवान के मन से शीतलता प्राप्त हो रही है चंद्रमा में, है ना। प्रकाश अगर मान ली कि सूर्य का ही परावर्तन है चंद्रमा का प्रकाश है तो भी उसमें शीतलता कैसे आ रही है, भगवान के मन से, भगवान का मन कितना शीतल है। हम लोगों का जो मन है वो बड़ा जो है तप्त रहता है, ताप है, हमारे मन में बड़ा ताप है, तीन प्रकार के ताप हमारे मन में ही आते हैं, है? हम तीन प्रकार के तापों से हम तपते हैं तो हमारा मन जो है तप्त है भौतिक संसार में, है ना, हमारा मन। लेकिन भगवान का जो मन है वो कितना शीतल है। तो यहां प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अतएव वह देवी देवताओं, देवी जीवों या देवताओं की भी शक्ति का स्रोत है, वो सारी वनस्पतियों की प्राण शक्ति है। तो वृक्षों में भी जो है जो पोषक तत्व आते हैं वो चंद्रमा से आते हैं, है? तो भगवान गीता में बोलते हैं पुष्णाम च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, गामाविशिष्ट भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णाम च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, अध्याय 15 श्लोक संख्या 13। तो भगवान कहते हैं कि सभी औषधियों को मैं पोषण प्रदान करता हूँ रसात्मक चंद्रमा बन करके। तो चंद्रमा में जो रस है वो, चंद्रमा का जो रस है वो औषधियों में आता है और औषधियों में वो गुण आता है, है? तो कई प्रकार के गुण औषधियों में आते हैं, है? तो वो चंद्रमा से ही आते हैं। तो ये जो व्यवस्था है वो भगवान की ही है, कि मैं चंद्रमा बन करके सभी औषधियों का पोषण करता हूं। पोषण का मतलब है विटामिन, तो कई प्रकार के विटामिन आते हैं, है ना। तो ये सब जो व्यवस्था भगवान की है इसमें हमारा कुछ भी हाथ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं इसमें कर सकते हैं, ना हम कुछ समझ सकते हैं कि कैसे भगवान करते हैं, लेकिन चंद्रमा से वो सब जो है पोषक तत्व आते हैं औषधियों में, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाल लिख रहे हैं कि सारी वनस्पतियों की प्राण शक्ति है। आगे दुर्भाग्यवश तथा कथित आधुनिक विज्ञानी चंद्रमा को पूरी तरह ना समझ सकने के कारण उसे मरुस्थल से भरा बताते हैं। तो दुर्भाग्य है, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, दुर्भाग्य किनका दुर्भाग्य है, आधुनिक विज्ञानियों का, आधुनिक वैज्ञानिकों का दुर्भाग्य है। तथा कथित, ये तथा कथित है मतलब सही नहीं है, सच्चे वैज्ञानिक नहीं है ये लोग। चंद्रमा को क्या कहते हैं कि मरुस्थल से भरा बताते हैं। तो चंद्रमा में गए, चंद्रमा में गए और वो ले आए कुछ पत्थर, ले आए, बस वही है, ये तो वही है, चंद्रमा में कुछ नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद इस श्लोक के द्वारा ये पुष्ट कर रहे हैं कि अगर चंद्रमा जो है सभी वनस्पतियों का स्वामी, इस पृथ्वी में जितने भी वृक्ष होते हैं उनमें जो भी शक्ति है और जो कुछ भी रस है वो चंद्रमा से अगर आ रहा है तो चंद्रमा में कैसे जो है वृक्ष नहीं होंगे, चंद्रमा में कैसे मरुस्थल होगा, क्यों मरुस्थल होगा? तो प्रभुपाद जी जो है इस बात को ये जो है पुष्ट कर रहे हैं और वैज्ञानिकों का खंडन कर रहे हैं, वैज्ञानिकों का खंडन कर रहे हैं, है ना। और अब वो चंद्रमा में जा भी नहीं रहे, एक बार गए चंद्रमा में और ये निकाल ले आए और अब जो है बता रहे हैं कि वहां कुछ नहीं है, बेकार है, हमने इसलिए हमने जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो गए नहीं, वो जा नहीं सकते है? और ये मान लिया उन्होंने और दुनिया को धोखा दे दिया कि हम गए और अब हमें दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, है? उसी तरह से जैसे लोमड़ी जो है बहुत उछलती रही और अंगूर नहीं मिला उसको अंगूर नहीं मिला तो उसने मान लिया कि अंगूर बेकार है, खट्टे हैं अंगूर, मुझे नहीं चाहिए इसी प्रकार से चंद्रमा में वो लोग नहीं गए, है ना। लेकिन जिस समय ये सूचना मिली थी कि भी चंद्रमा में चले गए, है ना, तो सन 71 की बात है, बहुत समाचार फैला था पूरी दुनिया में कि भाई चंद्रमा में चले गए। और वो तीन अंतरिक्ष यात्री थे, आर्मस्ट्रांग और ऐसे कुछ थे, तो वो है हाँ, तो 11वां पोलो ना ग्यारह नंबर का पोलो गया था, है ना। तो 11 नंबर का पोलो गया था, उसके पहले जितने अपोलो गए वो नहीं जा पाए, 11वां अपोलो चला गया, है ना। तो इस तरह से बहुत समाचार फैला था, तो पूरी दुनिया में एकमात्र प्रभुपाद थे जो हंस रहे थे और इसका मजाक उड़ा रहे थे इस बात का कि वे लोग चंद्रमा में नहीं गए, बाकी सब पूरी दुनिया जो है मान रही थी, है ना। तो हमारे मैं भी उस समय इंटर में था और भाई यही चर्चा चल रही थी, भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के विज्ञान की, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और प्रभुपाद ने सन 1965 में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंड तैयार किए थे, अभी तो 1 खंड आ रहा है, प्रथम स्कंद का 1 खंड में आ रहा है, पहले 3 खंडों में पहला स्कंद छापा था प्रभुपाद ने, वो भारत में छापा था, दिल्ली में छापा था, चौड़ी बाजार में छापा था, है ना। तो सन 1965 में प्रभुपाद ने लिखा था कि वे लोग नहीं जा सकते चंद्रमा में, सन 1965 में, ये पहले स्कंद का 5वां अध्याय श्लोक संख्या 18 के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा, कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, सन 1965 में प्रभुपाद ने लिखा। और सन 1971 में समाचार बहुत फैल गया कि वो पहुंच गए चंद्रमा, पहुंच गए। और ये किताब जो है जो सन 1965 की जो प्रभुपाद ने छापी थी, वो किताब मैं पढ़ रहा था आईआईटी कानपुर की लाइब्रेरी में जब मैं एमटेक कर रहा था आईआईटी कानपुर में। तो प्रभुपाद की वो किताबें 3 खंडों में श्रीमद् भागवतम जो थी वहां वो मुझे मिली। तो सन 1978 में मैं ये किताब पढ़ रहा था और मुझे कोई सूचना नहीं मिली इस्कॉन की कि इस्कॉन इतना बड़ा फैल गया, इतना ज्यादा फैल गया, मुझे कोई सूचना नहीं थी। और प्रभुपाद शरीर भी छोड़ चुके 77 में, 78 में जब मैं पढ़ रहा था तो ये 3 किताबें मैंने पूरी पढ़ी, लेकिन मैं प्रभुपाद को नहीं जान पाया क्योंकि इसमें प्रभुपाद का नाम भी नहीं था, प्रभुपाद नाम नहीं था, एसी भक्ति वेदांत स्वामी केवल था और वृंदावन कोई एड्रेस नहीं था, इस्कॉन का नाम नहीं था, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का नाम नहीं था और किसी केंद्र का नाम नहीं था। सन 1965 में कुछ हुआ ही नहीं था भारत में, प्रभुपाद ने छापी थी किताबें। तो मुझे जो है ये किताब, तीनों किताबें मैंने पढ़ी अंग्रेजी में और मुझे बड़ा जो है आश्चर्य हो रहा था कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो कि श्लोकों की व्याख्या भक्ति की ही दिशा में कर रहा है, प्रत्येक श्लोक की व्याख्या भक्ति की दिशा में कर रहा है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब श्रीमद् भागवत की एक जो है समझने की नई दिशा प्रदान की है और भक्ति की दिशा में हम प्रत्येक श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा इससे प्रभाव पड़ रहा था मेरे ऊपर। लेकिन जब ये बात मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी प्रभुपाद ने, ये तो बहुत गलत लिख दिया कि ऐसा होने वाला नहीं। तो हो गया, मैं 78 में पढ़ रहा था, 71 में हो गया, मतलब चंद्र में पहुंच गए। और 65 प्रभुपाद ने कहा कि नहीं हो सकता। तो कुछ देर के लिए मैंने पढ़ना बंद कर दिया और मेरे दिमाग में बड़ा धक्का लगा कि ये बात तो गलत हो गई प्रभुपाद की। फिर भी चलो, फिर भी मैंने पूरे पढ़ लिए, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें गुण ये था कि प्रभुपाद जो है प्रत्येक श्लोक की व्याख्या भक्ति की दिशा में कर रहे हैं ना। और 71 में प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे। तो ये बहुत, जब समाचार फैला तो प्रभुपाद हंस रहे थे कि वो लोग नहीं गए हैं, और प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने भी जो है छोड़ दिया प्रभुपाद को इसी बात पर कि प्रभुपाद नहीं मान रहे हैं, जबकि आज के विज्ञान ने जो है चंद्रमा में मतलब पदार्पण कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जो है मतलब पूरी तरह से आश्वस्त थे कि चंद्रमा में नहीं पहुंच सकते, कि सूर्य में नहीं पहुंच सकते, और सूर्य से दूना जो है दूरी पर चंद्रमा है, 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर सूर्य है, तो चंद्रमा 2,00,000 योजन की ऊंचाई पर है, तो चंद्रमा में कैसे पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन बाद में जो है ये पता चला कि ये वैज्ञानिकों ने जो है पूरी दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए ये शूटिंग अमेरिका में ही की थी, एरिजोना नाम का एक स्थान है, वहां पर शूटिंग की थी, है ना। तो वो जो है भेद बाद में खुला कि इस तरह से है। तो अभी भी इस बात का भेद अब सबको पता है या नहीं पता है, अब बात होती नहीं आगे चल करके कि भाई चंद्रमा में अब दोबारा जाएं, है ना। तो ये प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद ने इतना बड़ा कार्य किया, प्रभुपाद लीलामृत में भी इतना वर्णन नहीं आता कि प्रभुपाद कब गए थे कानपुर, आईटी कानपुर में कब गए थे, और प्रभुपाद ने ये किताबें खुद जाकर के लाइब्रेरी में पहुंचाई, या कौन गया था आईटी कानपुर में, प्रभुपाद ने किसके द्वारा पहुंचाई ये किताबें आईटी कानपुर में, तो ये विवरण इतना डिटेल नहीं मिलता। तो प्रभुपाद ने मतलब कितना बड़ा कार्य किया। तो वहाँ के आईआईटी कानपुर की लाइब्रेरी जो है कई मतलब उसके सेक्शन हैं, एक जो है रिलीजियस सेक्शन, तो उसमें जो है प्रभुपाद की 3 किताबें मैंने पढ़ ली, और तो भी मुझे इस्कॉन का कुछ पता नहीं चला, ना प्रभुपाद का नाम पता चला। फिर बाद में जो है जब मैं छोड़ करके अपने घर आ गया, एमटेक प्रोग्राम पूरा नहीं किया, छोड़ करके आ गया घर में, तो फिर मुझे कहीं से योग की पूर्णता नामक किताब मिली, उसमें लेखक का नाम था कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो मैं इतना जानता एसी भक्ति वेदांत स्वामी, केवल इतना नाम जानता था। अब शुरू में कृष्ण कृपा श्री मूर्ति लिखा और बाद में प्रभुपाद लिखा, तो फिर मैंने सोचा कि तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति नाम के आगे लिखा है और बाद में प्रभुपाद लिखा है, फिर नीचे लिखा था संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो मैंने सोचा कि अरे पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर दी है, तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तब मुझे पता चला, नहीं तो मैं सोचा कि इनको तो कोई जानता नहीं, श्रीमद भागवत की इतनी अच्छी व्याख्या लिखी है, इन्हें तो कोई जानता नहीं है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि तो पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दिए इस्कॉन सेंटर। और बाद में अंत में जो है लेखक परिचय में जब पढ़ा तो ये पता चला कि 70 में तो उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद ने जो है एक समय ऐसा भी था कि प्रभुपाद की बात को कोई नहीं समझ पा रहा था, और सब लोग आज के वैज्ञानिकों के चक्कर में जो है मूर्ख बने हुए थे कि वो चंद्रमा में चले गए, जबकि वो चंद्रमा में नहीं गए। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि चूंकि चंद्रमा हमारी वनस्पतियों का स्रोत है, अतः वो मरुस्थल कैसे हो सकता है। आगे, चंद्रमा का प्रकाश यानी चांदनी सारी वनस्पतियों की प्राणन शक्ति है, अतः संभवतः हम ये नहीं स्वीकार कर सकते कि चंद्रमा मरुस्थल है। तो प्रभुपाद इसलिए संभावना कर रहे हैं कि चंद्रमा जो है मरुस्थल नहीं होगा। तो यहां पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और इस श्लोक की जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। चंद्रदेव है प्रभु का मन, श्रुतियां यही कहती हैं। चंद्रदेव है प्रभु का मन, श्रुतियां यही कहती हैं। सभी देवों का अन्न बल और आयु ये चंद्र ही है। सभी देवों का अन्न बल और आयु ये चंद्र ही है। वृक्षों का सम्राट वही, वृक्षों का सम्राट वही प्रजा का वर्धक हो, प्रजा का वर्धक हो। इस मन को जो स्वीकार करे ऐश्वर्यमय प्रभु प्रसन्न हो, इस मन को जो स्वीकार करें ऐश्वर्यमय प्रभु प्रसन्न हो। तो हमने कुछ चर्चा की इस श्लोक के संबंध में। जब भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम में कहते हैं क्या कहते हैं, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय, ऐ नंद तनु किंकरम पतितम माम विस्मे भवामधो। कि हे नंद पुत्र, मैं आपका किंकर हूँ लेकिन मैं इस विषम भव समुद्र में गिरा हुआ हूँ। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय, कृपा करके अपने चरण कमलों में स्थित धूलि का कण के समान मुझे समझ लीजिए। विचिंता है, विचिंता का मतलब है समझ लीजिए। तो अपने मन में अगर आप ये भी समझ लें तो भगवान का मन इतना शक्तिशाली है। तो भगवान कहते हैं अपने मन में अगर आप ये समझ लें, मुझे क्या समझ लें कि आपके चरण कमल मैं जो है पड़ा हुआ धूल का कण मैं हूँ, अगर आप मुझे ऐसा समझ लें तो क्या होगा, मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। भगवान का जो चरण कमल है एक ऐसी नौका है कि जिसमें अगर हम आश्रय ले लें, इस नौका का आश्रय ले लें तो ये भाव समुद्र जो कितना गहरा और कितना विस्तृत है, ये कितना छोटा हो जाता है, बछड़े के खोर के बने गड्ढे के समान हो जाता है। तो फिर पार करने की आवश्यकता ही नहीं। तो भगवान के चरण कमल की नौका में आप चढ़िए और उतरिए और आप पार हो गए। ये नौका चलती भी नहीं है, भगवान के चरण कमल की जो नौका है ये चलती भी नहीं है, केवल चढ़ना और उतरना बस। आप जैसे चढ़ते हैं कमल, चरण कमल की नौका में, तो समुद्र जो है क्या हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है, कितना छोटा, बछड़े के खोर के बन गड्ढे के जैसा हो जाता है, तो फिर पार करने की बात ही नहीं है, आप उतरते हैं और आप पार हो गए, है ना। और भगवान का मन इतना शक्तिशाली, अगर भगवान अपने मन में सोच लें कि ये व्यक्ति जो है मेरे चरण कमल की धूल का एक कण है, अगर भगवान सोच लें तो आप पार हो जाएंगे। हरि बोल। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, क्या भगवान जो है अगर सोच लें कि ये व्यक्ति जो है मेरे चरण कमल में स्थित धूलि के कण के जैसा है तो समझ लो आप पार हो गए। भगवान के मन में, भगवान के मन में अगर ये बात आ जाए तो इसलिए क्या प्रार्थना करें भगवान चैतन्य, कृपया कृपा करके आप ऐसा सोच लो, भगवान सोच लें, अगर भगवान सोच लें तो। लेकिन भगवान अगर नहीं सोचते, भगवान नहीं सोचते, आप सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं क्यों इतना छोटा बनूं, तो भगवान कहते हैं हाँ आप बहुत बड़े हैं, तो भगवान फिर सोचते हैं कि आप बहुत बड़े हैं तो आप गिरे रहोगे इसी समुद्र में और इसी में ही डूबते रहोगे और कष्ट भोगते रहोगे। लेकिन अगर आप जो है भगवान से प्रार्थना करें और आप अपने को भी सोचें कि मैं उनके चरण कमल के जो है स्थित धूल का कण जैसा ही हूँ, और भगवान से प्रार्थना करें आप भी मुझे ऐसा सोच लो, तो अगर भगवान ऐसा सोच लें तो बस काम हो गया, सोचने से ही काम हो जाता है। तो भगवान का मन, भगवान का मन इतना शक्तिशाली है ना। तो चंद्रमा के संबंध में तो बहुत सी बातें हैं, जैसे प्रभुपाद ने जो है कभी जब किसी ने बहस की प्रभुपाद से है? तो उसने क्या बहस की, उसने बहस की कि भाई ये आपका जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन है तो ये मान लो पूरी दुनिया में फैल भी रहा है, तो भी कितना परसेंटेज है लोग इसको स्वीकार करते हैं, कितने परसेंटेज में लोग स्वीकार करते हैं? तो परसेंटेज के हिसाब से वो है वो इस आंदोलन को जो है महत्व देना चाहता है कि भाई कितना परसेंट है, 50% ज्यादा है तो भाई आपका आंदोलन ठीक है। तो प्रभुपाद ने जो है उसको डांट करके बोला, उसको डांट करके बोला, क्या बोला, इतना अच्छा प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं भी जो है मतलब सोच करके मुझे बड़ा बल मिला कि मतलब ऐसा जवाब हो सकता है, इतना अच्छा जवाब दिया प्रभुपाद ने, है ना। नहीं तो इसके पहले मैं जवाब देता था भाई भाई अगर ज्यादा लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो मेजोरिटी ऑलवेज कंटेन्स फूल्स, तो ज्यादा ज्यादा संख्या में लोग मूर्ख हैं इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं, है? तो इस तरह से हमारे उत्तर होते थे कि कई जन्मों के अंत में कोई व्यक्ति इसको स्वीकार करता है वो दुर्लभ है महात्मा, तो इस तरह से हम उत्तर दे रहे थे, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने जो उत्तर दिया वो इतना अच्छा उत्तर दिया, मुझे जो है हमेशा के लिए आंखें खुल गई कि क्या जवाब देना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर ऐसे तर्क करता है आपसे कि भाई ये कृष्ण के भक्त आपके जो है आंदोलन में कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो पूरे मनुष्यों की संख्या में 1% भी नहीं होंगे, 2% भी नहीं होंगे, तो क्या मतलब महत्व तो है आपके आंदोलन का, क्या महत्व तो है, 1% भी नहीं मानते। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि देखो कितने तारे हैं, तारों की संख्या कितनी है, उनमें से चंद्रमा का क्या परसेंटेज है, क्या एक चंद्रमा जो है पूरी रात्रि का अंधकार दूर करता है सब तारों की तुलना में, तो चंद्रमा का क्या परसेंटेज है। उसी प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, एक व्यक्ति भी जो है मतलब पूरे दुनिया का जो है क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है, और बाकी सब जो है बिल्कुल तारे की तरह है, एक व्यक्ति भी जो है क्या है, चंद्रमा। हरि बोल। इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता, कोई इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद ने यह जवाब दिया, है ना। तो एक चंद्रमा, पहले तो चंद्रमा के द्वारा ही रात्रि का अंधकार दूर होता था, अभी तो जो है शहरों में जो है बिजली के द्वारा रात्रि का अंधकार दूर होता है, पहले चंद्रमा के द्वारा, तो चंद्रमा का बहुत महत्व होता था, है? और चंद्रमा का जो है फिर विचार भी किया जाता था कि शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, आज कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि है उस हिसाब से चंद्रमा कितना होगा, और शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि है उसके अनुसार चंद्रमा कितना होगा। तो अभी जैसे चैत्र का महीना शुरू हो गया है और कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, तो द्वितीया तो पूर्णिमा के बाद द्वितीया, तो अब घट रहा है चंद्रमा, तो अभी चंद्रमा काफी है, मतलब 16 हिस्से में से 14 हिस्सा है चंद्रमा, द्वितीया है, तृतीया है तो फिर 13 हिस्सा चंद्रमा रह जाएगा, 3 हिस्सा कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से पहले जो है लोग चंद्रमा के अनुसार तिथि का विचार किया करते थे, अभी कोई चंद्रमा के अनुसार तिथि का विचार नहीं करते, क्यों, क्योंकि अब जो है बिजली है तो बिजली के अनुसार जो है रात को जो है दिन बना लेते हैं, तो दिन और रात में कोई अंतर नहीं पड़ता, पहले दिन और रात में बड़ा अंतर पड़ता था कि चंद्रमा के कारण जो है रात्रि का अंधकार दूर होता था, और कभी अमावस्या है तो अंधेरा रहेगा, तो इसमें जो है फिर बहुत लोग अपने अपने योजनाएं बनाते थे कि भाई अंधेरा रहेगा तो फिर हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और पूर्णिमा में चंद्रमा का पूरा प्रकाश रहेगा तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना, अपने पहले से ही सब योजनाएं बनाए करते थे। तो चंद्रमा के संबंध में कुछ इस तरह की बातें हैं यहाँ पर हैं, और ब्रह्मा जी जो है मतलब भगवान के प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग की जो है से जो है वो अलग अलग देवताओं की बात बताते हैं कि ये भगवान के शरीर का वो अंग है, भगवान के शरीर का वो अंग है, जल है वो भगवान का वीर है, सूर्य है वो भगवान का नेत्र है, इस तरह से जो है ब्रह्मा जी भगवान के शरीर से जो है के से शक्ति प्राप्त होती है, जितने भी देवता हैं या जितने भी तत्व हैं, तो प्रत्येक तत्व को भगवान के शरीर से ही शक्ति प्राप्त होती है। और प्रसिद्ध ताम नहा सा महाविभूति, वो महाविभूति हमारे ऊपर प्रसन्न हो, इस तरह से। तो भगवान की पालन शक्ति है जो कि चंद्रमा के रूप में कार्य कर रही है, इसी प्रकार से जल के रूप में भगवान की पालन शक्ति है तो वो कार्य कर रही है, वो भगवान के शरीर का वो भी एक अंग है, और अग्नि है तो वो भी भगवान की पालन शक्ति का कार्य कर रहा है, और भगवान के शरीर का ये मुख है तो भगवान के मुख से अग्नि को शक्ति प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कोई चर्चा, कोई विचार, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, अच्छा, हाँ प्रभु, हैंड माइक दीजिए सर। कृष्ण कुमार प्रभु बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की आज के इस श्लोक की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान को यदुवंशी भी कहते हैं और चंद्रवंशी भी कहते हैं, तो चंद्रवंश के बाद यदुवंश है या यदुवंश?
इनका अच्छा प्रश्न है कि भगवान को जो है चंद्रवंशी भी कहा जाता है, यदुवंशी भी कहा जाता है। तो चंद्रवंशी, ये चंद्रमा से जो वंश प्रारंभ हुआ, तो ये शुरू की बात है। ये जो सातवां मन्वंतर चल रहा है, तो सातवें मन्वंतर में दो वंश हैं जो मनु से आए हैं। मनु कौन से हैं? व्यवस्थित मनु। तो व्यवस्थित मनु से ही दो वंश आए हैं, एक चंद्रवंश आया, एक सूर्य वंश आया है। अब जाना, जो जा रहे हैं तो जाने दें, वो आप क्या करना है, जो जो बैठे हैं वो सुने, बैठ करके सुने। तो एक चंद्रवंश आया, ये दो वंश सूर्य वंश आया। तो सूर्य वंश कैसे आया? तो उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी है ना, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि के पुत्र हुए कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, जो अदिति के पुत्र हैं, और सूर्य के जो पुत्र हुए वो कौन हुए? इमं विवस्वान प्रोक्तवान विवस्वान मनवे प्राय व्यवस्वत मनु। सूर्य के पुत्र हुए व्यवस्वत मनु, विवस्वान मनवे प्राय मनुरक्षा का विपरीत, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो सूर्य वंश इस प्रकार से चल रहा है, सूर्य वंश भी कहा जाता है, और ये व्यवस्वत मनु का भी वंश कहा जाता है, और इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है, और रघुवंश भी कहा जाता है। इसमें और भी राजा हुए तो उनके नाम से ये वंश चलता है। और जो चंद्रवंश है वो कैसे हुआ? ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि से जो है चंद्रमा हुए, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। तो व्यवस्थित मनु के से जो है एक कन्या उत्पन्न हुई थी, इला नाम की कन्या, तो उससे बुध का विवाह हुआ, तो पुरुरवा का जन्म हुआ। तो मनु से ये भी, मनु से संबंधित ये भी है, चंद्रवंश भी मनु से संबंधित है, लेकिन चंद्रमा पिता के अनुसार जो है चंद्रमा से ये वंश आ रहा है। तो चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए नहुष, उनके पुत्र हुए ययाति। इस प्रकार से जो है ये चंद्रवंश कहलाता है। तो हमने तो जो है लिखा भी है चंद्रवंश का पूरा विवरण एक एक करके, कि भगवान कृष्ण के पिता, फिर उनके पिता, और चंद्रमा तक हमने जो है उनको पहुंचाया। इस प्रकार से चंद्रवंश का भी आप लिख सकते हैं, नवा स्कंद श्रीमद्भागवत है, उसमें सूर्य वंश का भी जो है आता है, और चंद्रवंश का भी पूरा विवरण आता है। तो उसमें बहुत से पुत्र होते हैं किसी पिता के, लेकिन उनमें से एक ही पुत्र से फिर और आगे जो वंश चलता है, तो वो जो है हमें देखना होता है। तो सूर्य वंश और चंद्रवंश दोनों जो है ये मनु से चल रहे हैं, ठीक है ना?
तो चंद्रवंश से ही यदु उत्पन्न हुए।
हाँ,
ये है ना,
यदु जो है ये चंद्रवंश में ही हुए, तो वो
इसीलिए भगवान को चंद्रवंशी भी कहते हैं और यदुवंशी।
हाँ, चंद्रवंशी यदुवंशी। यदु के जो छोटे भाई थे पुरु, तो पुरु के वंश में जो हुए तो वो फिर चंद्रवंशी नहीं कहलाते, हालांकि कि बड़े बड़े पुत्र से वंश मतलब चलता है, तो पुरु वंश से जो पुत्र हुए वो यदुवंश यदुवंशी नहीं कहलाते हैं, ये पुरु वंश से जो हुए तो वो जो है पुरु वंश में एक राजा हुए भरत, तो शकुंतला के पुत्र भरत हुए, तो फिर वो भरत वंश से मतलब पुरु वंश भी कहलाता है, भरत वंश भी कहलाता है। तो अर्जुन को पौरव बोलते हैं या भारत बोलते हैं, पुरु के वंश में इसलिए पौरव और भरत वंश में हुए इसलिए भारत कहे जाते हैं। तो अर्जुन यदुवंशी नहीं कहलाते, चंद्रवंशी नहीं कहलाते, हालांकि चंद्रवंश में ही एक शाखा है पुरु वंश की, लेकिन जो मुख्य शाखा है उसी से जो है वंश चलता है। तो चंद्रवंश की मुख्य शाखा है वो यदु, जो बड़े भाई बड़े पुत्र थे, यादव के बड़े पुत्र थे। तो इस प्रकार से जो है और अन्य शाखाएं भी होती हैं, लेकिन वो जो है उस वंश में फिर वो नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? अभी हमारे पास कुछ समय है तो प्रथम प्रिया प्रभु इनको माइक दीजिए। हाँ, हैंड माइक।
हरे कृष्णा। तो आज चंद्रमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन था, तो इसी श्लोक के ऊपर प्रभु जी का एक लेख भी है, श्रीमद भगवद गीता के श्लोकों के ऊपर जो लेख लिखे हैं प्रभु जी ने सभी श्लोकों पे, इसमें पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, तो 15वें अध्याय का 13वां श्लोक, तो उसकी PDF जो है मैंने कृष्ण कुमार प्रभु के पास भेज दी, बड़ी सुंदरी व्याख्या है उसमें, अगर किसी भक्त को कोई लेना चाहे विशेष तो उनसे ले सकते हैं। कृष्ण कुमार प्रभु
के मोबाइल में आ गया है। हाँ। जो गीता की वो व्याख्या 15वें अध्याय के 13वें श्लोक पर जो मैंने की है, तो उसमें वो समझाया गया है कि चंद्रमा जो है भगवान की विभूति है और कैसे सब औषधियों को पुष्ट करते हैं।
10 पेज का है वो,
10 पेज की व्याख्या है ना, तो कृष्ण कुमार प्रभु के मोबाइल में है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो।